कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के 20वें सत्र में। आज हमारा लॉकडाउन का 21वां दिन था, लेकिन हमने चैतन्य चरितामृत सत्र एक दिन लेट शुरू किया था, तो इसलिए हमारा 20वां दिन है आज। तो हम मध्य लीला में अभी है और मध्य लीला के पहले दो अध्याय हम देखते हैं कि संपूर्ण शेष लीला इसका सारांश है। तीसरे अध्याय में महाप्रभु संन्यास के पश्चात वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन छल पूर्वक नित्यानंद प्रभु उन्हें अद्वैताचार्य इनके घर लेके जाते हैं। वहां पर सच्ची माता उन्हें मिलती है और वो उन्हें निवेदन करती है कि आप जगन्नाथपुरी जाइए, वृंदावन मत जाइए। तो तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में, फिर महाप्रभु वहां से कुछ निजी पार्षदों के साथ जो है वो जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें क्या क्या लगता है उसका वर्णन बीच वाले अध्याय में आता है। चौथे अध्याय में माधवेंद्रपुरी इनकी भक्ति की महिमा, गोपाल का प्राकट्य और खीरचोर गोपीनाथ इनका वृत्तांत। पांचवें अध्याय में हमने देखा साक्षी गोपाल इनका वृत्तांत। छठे अध्याय में महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार। सातवें अध्याय में महाप्रभु जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं और वासुदेव इनका उद्धार होता है। कूर्म ब्राह्मण इसका भी उद्धार वहां पर करते हैं। उसके पश्चात आठवें अध्याय में रामानंद राय संवाद वो होता है। नौवें अध्याय में महाप्रभु का संपूर्ण दक्षिण भ्रमण वो होता है। उसके पश्चात महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ जाते हैं और दसवें अध्याय में सारे भक्तों का महाप्रभु को मिलना इसका वर्णन है। ग्यारहवें अध्याय में बंगाल के भी भक्त आके महाप्रभु को मिलते हैं और बेड़ा संकीर्तन पास टाइम्स ये इस अध्याय का शीर्षक है। बारहवें अध्याय में महाप्रभु सारे भक्तों को लेके गुंडीचा मंदिर इसका मार्जन करते हैं। तेरहवें अध्याय में महाप्रभु का जगन्नाथ रथ के सामने अतिशय अद्भुत ऐसा नृत्य जिससे जगन्नाथोपि विस्मितः, जगन्नाथ भगवान भी विस्मित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 13 अध्याय वहां पर वर्णन होता है। और 14 अध्याय में हेरा पंचमी महोत्सव वृंदावन पास टाइम का वर्णन वो होता है। 15वें अध्याय में सारे भक्त चले जाने के पश्चात सारे भक्तों का गुणगान महाप्रभु करते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य इनके यहाँ पे प्रसाद के लिए जाते हैं, उनके यहाँ पे प्रसाद के लिए जाना और अमोघ इसका उद्धार ये 15वें अध्याय में हुआ। और 16वें अध्याय में जो कल हमने चर्चा की थी, महाप्रभु उनका दूसरा प्रयास होता है वृंदावन जाने का और महाप्रभु वृंदावन के लिए चल पड़ते हैं, गांव गांव से होकर जाते हैं। और फिर हमने देखा कि महाप्रभु बंगाल में भी आते हैं, वहां पर शांतिपुर में रहते हैं, उनकी माँ और कई सारे भक्त वहां पर उन्हें मिलते हैं। और एक ब्रह्मचारी होता है नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी जो मन में ध्यान लगाता है कुलिया से लेकर के, और देखता है तो उसका ध्यान कन्हई नटशाला तक ही जा रहा है, उसके आगे महाप्रभु नहीं जा रहे, तो कन्हई नटशाला तक ही महाप्रभु जाएंगे, ऐसा वो भक्तों को बताते हैं। और फिर महाप्रभु वहां से फिर रामकेली चले जाते हैं। और जैसा हमने कहा कि ये 16वें अध्याय में वर्णन नहीं है, क्योंकि कविराज गोस्वामी इसका वर्णन जो पहला अध्याय मध्य लीला का उसमें ही कर चुके हैं विस्तार से, कि महाप्रभु किस प्रकार से रूप और सनातन उनको मिलते हैं। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जिनके पूर्व नाम क्रम से दबीर खास और साकार मलिक ये थे, और जिनके पूर्व नाम भी मैंने आपको बताए थे, सनातन गोस्वामी इनका पूर्व नाम था संतोष, और रूप गोस्वामी इनका पहला नाम था अमर। तो इस प्रकार से ये फिर महाप्रभु से मिलते हैं, और महाप्रभु ने बताते हैं कि मैं यहां आने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं तो वृंदावन जा रहा था, लेकिन केवल आप लोगों को मिलने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए मैं यहां पर जो है वो आया हूं। तो इस प्रकार से उनका उनकी दीक्षा भी एक प्रकार से जो है वो पहली भेंट में हो जाती है। आजी है ते दुहार नाम रूप सनातन दैन्य छाड़ी तोमार दैन्य फाटे मोर मन। तो इस प्रकार से महाप्रभु उन्हें वो नाम भी प्रदान करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण आपके ऊपर कृपा करेंगे तो आप जरूर मुझे आके बाद में मिलेंगे। तो वहां पर उन्हें कृपा हुई, और उसके पश्चात महाप्रभु जो है वो आगे जाते हैं, कन्हई नटशाला तक जाते हैं, लेकिन वहां से पुनः घूम के वापस आ जाते हैं। और महाप्रभु पहुंचते हैं पुनः शांतिपुर, और वहां पर रघुनाथ दास इनको मिलते हैं, याद होगा रघुनाथ दास गोस्वामी। तो जो महाप्रभु को वहीं पर मिले थे, पहले भी महाप्रभु से मिले थे, याद है आपको हमने बताया था, जब महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात जब तीसरा अध्याय, वहीं पर भी महाप्रभु से वो मिले थे, और महाप्रभु के पीछे जाने की उनके बहुत अभिलाषा थी, लेकिन उनके माता पिता उन्हें रोक लेते थे। तो क्योंकि अभी महाप्रभु शांतिपुर में पुनः थे, तो वो पिताजी से आज्ञा मांगकर जाते हैं कि अभी तो मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे नीलाचल नहीं जाने देते, तो कम से कम यहां तक तो जाने दीजिए। और फिर उनके पिताजी आज्ञा देते हुए, और वो 7 दिन के लिए वहीं पर शांतिपुर में महाप्रभु की सेवा में रत रहते हैं। और किस प्रकार से महाप्रभु ने उन्हें उपदेश दिया वहां पर कि मरकट वैराग्य मत दिखाओ और घर जाके अच्छे से आप कार्य करो, और वो फिर घर चले जाते हैं। और महाप्रभु कहते हैं कि जब मैं पुनः कभी वृंदावन जाऊंगा और वहां से आने के पश्चात मैं तुम्हें जगन्नाथपुरी वापस बुला लूंगा। और इस प्रकार से शांतिपुर से होकर महाप्रभु पुनः जगन्नाथपुरी में पहुंच जाते हैं, और जगन्नाथपुरी में पहुंच के गदाधर पंडित इनके साथ उनका आदान प्रदान होता है। और महाप्रभु कहते हैं कि शायद मैंने गदाधर पंडित का मन दुखाया, इसलिए मेरी वृंदावन यात्रा असफल रही। और यहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से वैष्णव के मन को कभी दुखाना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे कार्यों में हमें असफलता प्राप्त हो सकती है। तो महाप्रभु भी अभी जगन्नाथपुरी में है, 2 बार उन्होंने वृंदावन का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार विफल हो गया। पहला प्रयास कहां किया था, पहला प्रयास उन्होंने किया था संन्यास लेने के तुरंत पश्चात मध्यलीला के अध्याय 3 में, लेकिन नित्यानंद प्रभु छलपूर्वक उन्हें अद्वैताचार्य के घर लेके जाते हैं। दूसरा प्रयास उनका हुआ 16वें अध्याय में, क्यों महाप्रभु आगे नहीं जा पाए, उसके कई कारण हमने देखे थे। सर्वप्रथम कारण है कि सनातन गोस्वामी महाप्रभु से कहते हैं कि आप इतने लाखों लोगों को वृंदावन नहीं लेके जाइए, वहां पे अशांति होगी, इसलिए आप अकेले जाइए, तो इसलिए महाप्रभु नहीं जाते हैं। नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी ने ध्यान में केवल कन्हई नटशाला तक ही रास्ता बनाया हुआ था, वहां से महाप्रभु पुनः आ जाते हैं। और जगन्नाथपुरी में पहुंचने के बाद महाप्रभु ये कारण बताते हैं कि शायद मैंने गदाधर पंडित का मन दुखाया था, इसलिए मेरी वृंदावन यात्रा जो है वो पूरी नहीं हुई। तो ये कारण था वास्तव में कि महाप्रभु क्यों वृंदावन नहीं गए। तो अभी महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, और अभी और एक बार उनके मन में अकेले वृंदावन जाने की इच्छा जागृत हो जाती है। हम प्रारंभ कर रहे अध्याय 17, जिसका शीर्षक है महाप्रभु का झारखंड जंगल से वृंदावन के लिए निकलना, वृंदावन गमन। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो अभी शरद ऋतु चल रहा है, शरद काल हैल प्रभुर चलित हैल मति रामानंद स्वरूप संगे निभृते युग कति। इस शरद काल में महाप्रभु के मन में मति क्या क्या आता है कि वृंदावन तो मुझे जाना ही है। आपको याद है कल मैंने बताया था कितने साल हो गए थे महाप्रभु को संन्यास लेके, अभी 5 साल हो गए थे। तो 5वें साल में महाप्रभु ने यह प्रयास किया था, दूसरा वो असफल हुआ था, तो उसके पश्चात अभी महाप्रभु कहे कि मुझे अकेला तो वृंदावन जाना चाहिए, तो इसलिए निभृते युगति उन दोनों को एकांत में बुलाते हैं, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, और इनसे कहते कि मैं इस बार जो है मैं जंगल मार्ग से वृंदावन के लिए निकलूंगा और मैं अकेला जाऊंगा, किसी को साथ में तो लेके नहीं जाऊंगा। और महाप्रभु कहते हैं कि आप मुझे देखो सुखपूर्वक आशीर्वाद दे देना, यदि आप दुखी हो जाएंगे तो पिछला अनुभव है, गदाधर पंडित दुखी हो गया था, मेरी यात्रा असफल हो गई, तो आप सुखपूर्वक हमें आशीर्वाद दीजिए तो मैं वृंदावन की यात्रा अच्छे से कर पाऊंगा। स्वरूप दामोदर कहते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु आप कह रहे हैं कि हमारा सुख ही आपका सुख है, तो हमारा सुख इसमें है यदि आप एक हमारी इच्छा पूरी करें। महाप्रभु कहते हैं कि क्या है आपकी इच्छा, वो कहते हैं कि एक भक्त, कोई एक ब्राह्मण कम से कम आपके साथ लेके जाइए, क्योंकि आप जंगल से जाएंगे तो आपको वहां पर, क्योंकि गांव से जब आप गए थे तो कई ब्राह्मण आपको रास्ते में भोजन के लिए बुला लेते थे, तो लेकिन अभी आप जंगल पथ से जाएंगे तो कोई आपको भोजन बनाने वाला तो जरूर साथ में चाहिए। महाप्रभु कहते हैं कि देखो मैं किसी एक भक्त को लेके जाऊंगा तो दूसरा भक्त नाराज हो जाएगा कि इसे लेके गए मुझे नहीं लेके गए, तो इसलिए आप कह रहे हैं तो मैं जरूर लेके जाऊंगा किसी एक को साथ में, लेकिन दो शर्तें हैं, शर्त यह है कि वो भक्त नया चाहिए और दूसरी शर्त है कि उसका मन शांत होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार दक्षिण भारत में हमें अनुभव है, दक्षिण भारत यात्रा में कौन गया था महाप्रभु के साथ, काल कृष्ण दास, तो किस प्रकार से भट्टाथरी उनके संगम में वो अटक गए थे और फिर महाप्रभु को उनको निकाल के लाना था, कहां पे वर्णन आता है इसका, मध्य लीला अध्याय 9 में हमने इसकी चर्चा की है, तो उनको लेके आना था, तो महाप्रभु कहे कि वो एक तो नया चाहिए और दूसरा उसका मति शांत चाहिए, उसका मन शांत चाहिए। तो फिर स्वरूप दामोदर कहते हैं कि एक भक्त मेरे नजर में आ रहा है जो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकता है, वो है बलभद्र भट्टाचार्य। बलभद्र भट्टाचार्य इसका आपके प्रति एक प्रेम है, और पिछले समय जब आप बंगाल से आए थे तो उसके आपके साथ ही ये आया हुआ था, अनुराग है, और जो आप कह रहे उसका मन शांत होना चाहिए, उसका मन शांत है और वह अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है, कृपया आप उसे आपके साथ लेके जाइए। और है कि उसके साथ और एक ब्राह्मण भी जाना चाहिए, क्योंकि कोई तो होगा जो शाक फल सब्जियां लेके आपके लिए खाना बनाएगा, लेकिन आपके वस्त्र आपका जल उनको वहन करने के लिए कोई और एक सेवक आपके पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु अभी बलभद्र भट्टाचार्य और उनके साथ और एक सेवक, ऐसे दो लोगों को लेके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अभी सबके सामने निकल पड़ेंगे तो कोई ना कोई भक्त पीछे पड़ जाएगा, और पिछला हमारा अनुभव है कि सारे कोई भक्त मूर्छित गिर जाता है, कोई पीछे चल जाता है। तो महाप्रभु भोर होने से पूर्व प्रातः काल में बहुत जल्दी सुबह निकल पड़ते हैं और महाप्रभु आगे 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 जा रहे हैं, और जब सारे भक्त यहाँ पर उठ जाते हैं सुबह, तब देखते हैं महाप्रभु चले गए, तो अभी वो विलाप करने लगते हैं, लेकिन स्वरूप दामोदर आदि सब उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप सुखी रहिए, महाप्रभु बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु अभी आगे 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 गमन कर रहे हैं। महाप्रभु कल भी हमने देखा कि कटक गांव रास्ते में आया था, और कटक गांव से महाप्रभु फिर आगे चतुष ग्राम यहां पर रुके थे, तो इस बार भी महाप्रभु को रास्ते में जाते जाते कटक लग जाता है, लेकिन अभी महाप्रभु रास्ता बदली कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो अभी बंगाल की दिशा में नहीं जाना है, अभी उन्हें वृंदावन की दिशा में जाना है, लेकिन जंगल के मार्ग से जाना है, क्योंकि साथ में कोई नहीं होना चाहिए, यह सनातन गोस्वामी ने उपदेश दिया था। तो इसलिए महाप्रभु अभी चलते हैं। प्रसिद्ध पथ छाड़ी प्रभु उपपथे चलीला, कटक दाहिने करी वने प्रवेशिला। तो इस प्रकार से उन्होंने कटक को जो है वो दाहिने करी, अपने दाहिने और कटक को छोड़ दिया और उपपथे चली, उपपथ मतलब जो जंगल वाला पथ है, वहां से महाप्रभु जंगल में प्रवेश कर लेते हैं। और इस प्रकार से निर्जन जंगल है, कोई वहां पर नहीं है, महाप्रभु केवल कृष्ण नाम में मदमत्त होकर उस जंगल के मार्ग से जा रहे हैं। जब जा रहे होते हैं जंगल के मार्ग से, तो रास्ते में कई सारे हिंसर पशु भी वहां पर जो है वो आ जाते हैं, लेकिन महाप्रभु जब कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, उस कीर्तन की विशेषता ये थी कि जो सारे पशु रास्ते में आ रहे थे वो महाप्रभु को रास्ता दे रहे थे आगे 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 जाने के लिए। ऐसा ये अचंभित करने वाला दृश्य वहां पर था। निर्जन वन चले प्रभु कृष्ण नामला, हस्ती व्याघ्र पथ छड़े प्रभु रे देखिया। हाथी व्याघ्र कई सारे बाघ जो है वो महाप्रभु का रास्ता छोड़ रहे थे, उन्हें रास्ता दे रहे थे। और जब बलभद्र भट्टाचार्य ये देखते कि ये सारे सारे हिंस्र पशु पक्षी ये रास्ता दे रहे हैं, रास्ते में एक जैसे खड़े हो रहे हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं बलभद्र भट्टाचार्य। इस प्रकार से एक बार महाप्रभु आगे चलते चलते जाते हैं तो रास्ते में एक शेर सोया हुआ रहता है, और जब महाप्रभु कीर्तन करते हुए जाते हैं उनका चरण का स्पर्श हो जाता है शेर को, और शेर जागृत हो जाता है और महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण कृष्ण कहते हैं। वो व्याघ भी अपने दो हाथ मतलब आगे वाले पैर हाथ जो भी आप उसे कहे वो भी ऊपर उठा के कृष्ण कृष्ण करता है, और बलभद्र भट्टाचार्य भयभीत हो जाते हैं ये क्या हो रहा है, और आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो वो भी जो है वो वाघ कृष्ण कृष्ण कहने लगता है और वो भी कीर्तन प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु और आगे आगे चल रहे, आगे जाके महाप्रभु एक नदी आती है, उस नदी में महाप्रभु अपना स्नान करते हैं और अपना गायत्री जप संध्या का जो समय होता है उसमें गायत्री कर रहे होते हैं। अचानक वहां पर कई सारे हाथियों का झुंड आ जाता है और मदमत्त होते हैं वो हाथी, और जब जैसे वो हाथी प्रवेश कर देते हैं बलभद्र भट्टाचार्य भयभीत हो जाते हैं कि अभी क्या होगा, महाप्रभु का तो ध्यान नहीं है। महाप्रभु का गायत्री मंत्र जैसे ही समाप्त हो जाता है उस नदी से कुछ जल महाप्रभु लेते हैं और जल की बूंदे उन हाथियों के ऊपर छिड़कते हैं। जैसे ही जिन जिन हाथियों के ऊपर जल की बूंदे गिरी वो हाथी भी पागल होके कृष्ण 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 इस प्रकार से जो है वो पुकारने लगते हैं। तो ऐसा ये अद्भुत दृश्य वहां पर था। अभी महाप्रभु आगे जा रहे हैं, जाते जाते कई सारे हिरण उनकी तरफ जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। महाप्रभु इन हिरणों के ऊपर भी जो है वो अपना हाथ फेरते हैं, और जैसे हमारा मंदिर में भी जब भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण के लेफ्ट साइड में एक चित्र है, तस्वीर है, चित्र महाप्रभु झारखंड जंगल से जो जा रहे है, तो कई सारे हिरण और वो उनकी तरफ जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे ये हिरण साथ में अभी महाप्रभु के चल रहे हैं, कल्पना कीजिए महाप्रभु जा रहे हैं बलभद्र भट्टाचार्य साथ में, उनका सेवक साथ में, और हिरण हिरणों का झुंड जा रहा है, और अचानक जो है वो 5-7 शेर वहां पर आ जाते हैं, और हम देख सकते हैं कि शेर और हिरण इनका जो है वो हमेशा बैर होता है। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है देखिए, हेनकाले व्याघ्र तथा आइल 5-7 व्याघ्र मृगे मिली चले महाप्रभुर साथ। 5-7 व्याघ्र आ जाते हैं, लेकिन वो व्याघ्र जो है वो शेर भी है वो उस हिरणों के झुंड में महाप्रभु के साथ आगे चलना प्रारंभ कर देते हैं। महाप्रभु जैसे ही देखते हैं कृष्ण कीर्तन उनका चल रहा है, महाप्रभु जैसे ही देखते हैं कि ये दृश्य यहाँ पर मृग हिरण और व्याघ्र शेर ये सब एक साथ चल रहे हैं, उनके मन में तुरंत वृंदावन की स्मृति होती है। ऐसा दृश्य वृंदावन में ही केवल पाया जा सकता है। यत्र नैसर्ग दुर्वैरासहासन नृमृगादयः मित्राणि वाजितावास द्रुत रुत्तर्षकादिकम्। ऐसा वो स्थान है निवासम, किसका निवास, भगवान कृष्ण का निवास, जहां पर भूख प्यास कुछ नहीं होता है। मित्राणि वाजितावास द्रुत रुत्तर्षकादिकम्, और वहां पर साधारणतः क्या क्या पाया जाता है, यत्र नैसर्ग दुर्वैराः, नैसर्गिक स्वाभाविक जो है वो वहां पर दुश्मनी जिन 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 जिनमें साधारणतया नैसर्गिक भाव से वैर पाया जाता है। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सह आसन नृ मृगादयः, पशु हिंसर पशु और मनुष्य इनमें जो है वो वैर होता है, लेकिन सह आसन ये सब एक साथ निवास करते हैं, ऐसा होता है भगवान का धाम। वैसा ही ये वृंदावन है, महाप्रभु को वृंदावन की स्मृति होती है और वो ये श्लोक उच्चारण करते हैं जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि इस प्रकार से इनके अंदर बैर होना चाहिए, लेकिन ये सब जो है वो एक साथ अभी चल रहे हैं और कीर्तन करते हुए, ऐसा नहीं कि केवल चल रहे हैं दुश्मनी भूल कर, लेकिन कीर्तन करते हुए जो है वो आगे चल रहे है और नाचते हुए, नाचे कांदे व्याघ्र गण मृगी गण संगे बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंगे। इस प्रकार से नाचे कूदे नाचते हुए कूदते हुए कौन कूद रहा है, व्याघ्रगण मृगीगण संगे, व्याघ्र और ये मृग सब साथ साथ चल के जो है वो चल रहे हैं आगे। और बलभद्र भट्टाचार्य देखी अपूर्व रंगे, बलभद्र भट्टाचार्य देख रहे कि क्या ये अपूर्व शोभा यहाँ पर महाप्रभु की प्रकट हो रही है। और इतना ही नहीं, आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये व्याघ्र और मृग दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, एक दूसरे का चुंबन करते हुए जो है वो आगे 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 जा रहे हैं। इस प्रकार से आगे चलते हैं तो कोई मोर मोरनिया वो नृत्य करते हुए महाप्रभु के झुंड में शामिल हो जाते हैं। और महाप्रभु जो है वो उन्हें भी कीर्तन में लगाते हुए वो मोर मोरनिया नृत्य करते हुए उनके साथ आगे चलते हैं। और वृक्ष और जो लताएं हैं उन पर भी महाप्रभु के कीर्तन का प्रभाव होता है। हरि बोल बलि प्रभु करे उच्च ध्वनि, वृक्ष लता प्रफुल्लित सेई ध्वनि सुनी। महाप्रभु जब हरि बोल हरि हरि ऐसा करते हुए जब उच्चारण करते हुए वहां से जा रहे हैं तो सारी वृक्ष सारी लताएं अभी प्रफुल्लित हो रही है और प्रफुल्लित होकर के वो भी मानो जो है वो नृत्य कर रही है और कीर्तन कर रही है, ऐसा वहां पर जो है वो दृश्य है, ऐसा वहां पर प्रतीत हो रहा है। और इस प्रकार से महाप्रभु इस झारीखंड वन से अभी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। झारीखंडे स्थावर जंगम आचयत, कृष्ण नाम दिया कैल प्रेमेते उन्मत। झारीखंड में महाप्रभु ने जो है वो स्थावर और जंगम, चल वस्तु अचल वस्तु जो भी कुछ था, चल मतलब जो चलने वाले पशु पक्षी हिरण हाथी शेर हमने देखा, और अचल का अर्थ है वो वृक्ष वहां पर लताएं पुष्प, उन सबको कृष्ण नाम दिया कैल प्रेमेते उन्मत। महाप्रभु ने कृष्ण का नाम उन्हें दिलाया और उससे वो सब उन्मत्त होकर के कृष्ण नाम ले रहे थे। इस प्रकार से महाप्रभु झारीखंड वन से गुजरते गुजरते अभी वहां पर जो है वो वहां पर कुछ लोग भी महाप्रभु से मिलते हैं। जैसे जंगल में कई बार कुछ आदिवासी लोगों की बस्तियां होती है, भिल्ल जाति जैसे उन लोग होते हैं, उन बस्तियों के लोगों को भी महाप्रभु मिले। कोई व्यक्ति आता महाप्रभु उनको देखते तो महाप्रभु को देखकर ही उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम उस व्यक्ति के शरीर में संचारित हो जाता, वह भी कीर्तन और नृत्य करने लगता। और वे व्यक्ति जब अपने बस्ती में वापस जाता तो वापस जाने के पश्चात जो है वो जो लोग उस व्यक्ति को देखते उनमें भी कृष्ण प्रेम संचारित हो जाता, और उन लोगों को जो व्यक्ति देखते वो भी कृष्ण प्रेम में संचारित हो जाता। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परंपरा में जो है वो सारे बस्तियों की बस्तियां जो है वो कृष्ण भक्त हो रही थी। और इस प्रकार से कविराज गोस्वामी बताते हैं कि महाप्रभु का झारखंड जंगल से जाना तो केवल एक बहाना था वृंदावन जाने का। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में हमने देखा आठवें नवे अध्याय में, सातवें आठवें नवे अध्याय में कि किस प्रकार से महाप्रभु ने अलग अलग तात्विक, अलग अलग मीमांसक, मायावादी, बुद्धिस्ट, इस प्रकार से अलग अलग लोगों का उद्धार किया, लेकिन ये जो जंगल में रहने वाले निवासी थे उनका उद्धार करना बाकी था। तो इसलिए महाप्रभु छल पूर्वक करते हैं, महाप्रभु बहाना बना के जो है वो यह मार्ग महाप्रभु ने चुना था। मथुरायाई बार छले आसे न झारी खंड, भिल्ल प्राय लोकता हा परम पाषंड। छले पूर्वक, छल मतलब बहाना बना के महाप्रभु जो है वो आसे न झारी खंड, बहाना बनाकर महाप्रभु झारीखंड आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भिल्ल प्राय लोकता हा परम पाषंड, भगवत भक्ति विहीन जैसे भिल्ल आदि ये लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए ही शायद महाप्रभु झारीखंड वन से गुजर कर जो है वो आगे जा रहे थे। बलभद्र भट्टाचार्य रास्ते में चलते चलते कई सारे वन में आने वाली शाक सब्जियां उन्हें एकत्रित करते, और ऐसे जो लोग थे वो लोग भी कुछ हद तक जो है वो उन्हें कुछ दान देते, कुछ थोड़ा बहुत भात, कुछ थोड़ा बहुत सब्जियां ये दान में देते। तीन चार दिन तक चले गए ऐसा वो अपने साथ कलेक्ट कर लेते और वहां से आगे जाते 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 बीच बीच में उनका ही जो है वो नदी के तट पर रुकते, महाप्रभु नदी में स्नान करते, तब तक बलभद्र भट्टाचार्य उनके लिए जो है वो खाना बनाया करते थे और महाप्रभु का वो दास भाव में सेवा करते थे। महाप्रभु उनकी सेवा के ऊपर बहुत ही जो है वो संतुष्ट थे। भट्टाचार्य पाक करे वन्य व्यंजन, वन्य व्यंजने प्रभुर आनंदित मन। वन्य व्यंजन मतलब जंगल वाले पदार्थ लेके भट्टाचार्य जो वहां पर खाना बनाते थे, और महाप्रभु का मन जो है वो ऐसे वन्य व्यंजने प्रभुर आनंदित मन। अभी तक महाप्रभु हमें पता है जगन्नाथपुरी में रहते थे तो कई सारे भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य सब उन्हें प्रसाद के लिए निवेदन, और सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पर प्रसाद का वर्णन हमने देखा था 15वें अध्याय में विस्तार से वर्णन है क्या क्या महाप्रभु को खिलाया गया। और जब महाप्रभु अभी कुछ दिन तक शांतिपुर से रह के आए हैं, और शांतिपुर में कौन कुकिंग के लिए था हमें पता है, शची माता है, और माता कई वर्षों पश्चात जब अपने पुत्र से मिल रही है तो उन्होंने भी जो है वो बहुत बड़ी फिस्ट महाप्रभु को खिलाई होगी। लेकिन अभी जंगल से महाप्रभु जा रहे हैं, लेकिन ये वन्य भोजन करके भी महाप्रभु जो है वो वन्य व्यंजन है प्रभुर आनंदित मन, क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है वृंदावन पहुंचना, और वहां पर पहुंचने से पहले जो जो भी जो असावधानियां या असुविधाएं उन्हें आती है वो असुविधाएं भी उन्हें संतोष करने वाली ही जो है वो प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु को दास भाव में सेवा करते हैं, और महाप्रभु कहते हैं कि ये कृष्ण की कृपा ही है कि हम वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं, और महाप्रभु पिछला सारा वृत्तांत सार्वभौम भट्टाचार्य को सुना देते हैं कि किस प्रकार से मैं बंगाल गया था, मतलब हमारे लिए हम लोग देख सकते हैं 16वें अध्याय में किस प्रकार से मैं बंगाल गया था, मेरे मन में यह था कि मैं सारे भक्तों को मिलूंगा और उनमें से कुछ भक्तों को लेके मैं वृंदावन की दिशा में चल पड़ूंगा तो वृंदावन यात्रा हमारी हो जाएगी, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन क्या हुआ कि लाखों की भीड़ वहां पर उपस्थित हो गई, और आप पूछो मत बलभद्र, इतनी भीड़ हो गई कि हम लोग परेशान हो गए, और कृष्ण ने सनातन के मुख से मुझे उपदेश दिया कि आप वृंदावन मत जाइए। देखिए महाप्रभु भी उनके जीवन में जो हो रहा था उसे कृष्ण की इच्छा ही मान रहे थे, और कृष्ण बुलवा रहे उन भक्तों से, ऐसा बलभद्र को महाप्रभु बताते कि कृष्ण सुनाइला सनातन मुखे, सनातन के मुख से कृष्ण ने मुझे ये उपदेश दिया था। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी भी यदि कोई उन्हें कुछ उपदेश देता तो वो मानते कि यह कृष्ण का ही उपदेश है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार कुछ जो बैक टू गॉडेड मैगजीन और कई सारे ऐसे मैगजीन्स उनका वितरण कर रहे थे, और चाय की दुकान पे एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी को कहा कि ये कब तक टिकेगा ये आपका मासिक और ये आपकी पत्रिका, आप कुछ पुस्तक लिखे तो ये पुस्तक जो है वो चिरकाल तक टिकते हैं। तो वो उपदेश प्रभुपाद जी लिखते हैं अपनी डायरी में कि कृष्ण ने मुझे उपदेश दिया था उस व्यक्ति के मुख के द्वारा। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बलभद्र को कहते हैं कि कृष्ण ने सनातन गोस्वामी के मुख से मुझे उपदेश दिया और मैंने उसका पालन किया, और मैंने सोचा फिर मैं अकेला वृंदावन जाऊंगा, और आज कृष्ण की कृपा है कि आपके साथ मैं यहां से जा रहा हूं, और आपकी भी मेरे ऊपर विशेष कृपा है। बलभद्र भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु आप ऐसी कैसी बात कर रहे कि मेरी आपके ऊपर कृपा है, वास्तव में देखा जाए तो आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, आपकी जो है वो मेरे ऊपर कृपा है, ये मेरा सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके साथ वृंदावन जाने के लिए मिल रहा है, मैं एक कौवे के समान हूं और आपके संग में आपने मुझे एक गरुड़ के भांति बना दिया है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। ये भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो सकती है, पंगुम लंगायते गिरिम, पंगु व्यक्ति भी पर्वत के ऊपर चढ़ सकता है, और मूकम करोति वाचालम जो मूका व्यक्ति है जो बोल नहीं पाता वो भी जो है वो भगवान की कृपा यदि उसके ऊपर हो गई तो वो भी व्यक्ति अच्छे से बोल सकता है। आपकी कृपा मेरे ऊपर है महाप्रभु, इसलिए मेरा सौभाग्य की सीमा नहीं है और मैं आपके साथ चल पा रहा हूं। इस प्रकार से वो स्तवन करते हैं। ऐ मत बलभद्र करे न स्तवन प्रेम सेवा करी तुष्ट कैला प्रभुर मन। प्रेम पूर्वक सेवा करके उन्होंने महाप्रभु के मन को जीत लिया था। भगवान के मन को जीतने का यही एकमात्र तरीका है कि प्रेम से उनकी सेवा की जाए। जैसे बलभद्र भट्टाचार्य कई सारी असुविधाएं थी, जंगल से जा रहे थे, हिंसक पशु उनका भय था, खाने के लिए कुछ यहां वहां से वो कैसे तो गुजारा कर लेते थे, लाया करते थे, लेकिन फिर भी प्रेम से वो सेवा कर रहे थे महाप्रभु की, और उस प्रेम से महाप्रभु का मन जो है वह उन्होंने जीत लिया था। तैसे महाप्रभु आगे 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 अभी जा रहे हैं, महाप्रभु पहुंच जाते हैं काशी, और काशी में हमें पता है जिसे वाराणसी नाम से भी जाना जाता है, वहां पर महाप्रभु गंगा नदी में स्नान करते हैं और जैसे वो स्नान करके बाहर आते हैं, वस्त्र परिधान कर लेते हैं, वहां पर अचानक तपन मिश्रा आ जाते हैं। आपको याद है तपन मिश्रा कौन है? तपन मिश्रा की भेंट सबसे पहले महाप्रभु को कहां हुई थी? आप यदि आदि लीला अच्छे से पढ़ रहे हैं तो जब महाप्रभु अपने कैशोर आयु में जब पूर्व बंगाल गए थे, पूर्व बंगाल आदि लीला अध्याय 14, वहां पर उन्हें तपन मिश्रा मिले थे। महाप्रभु के साथ वो नवद्वीप जाना चाहते थे लेकिन महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी कि आप वाराणसी जाइए, तो वही तपन मिश्रा अभी वाराणसी में सेटल हुए हैं। उन्हें पता था कि महाप्रभु संन्यास लिया हुआ है महाप्रभु ने, लेकिन अभी तक महाप्रभु से मिलना उनका नहीं हुआ था। संन्यास के पश्चात तपन मिश्रा की ये वाराणसी में हो रही है पहली भेंट। तपन मिश्रा महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में झुक जाते हैं, प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। महाप्रभु उन्हें उठाकर आलिंगन देते हैं और सब वार्ता वहां की पूछते हैं। तपन मिश्रा इस प्रकार से महाप्रभु को साथ में लेके काशी के तीर्थ स्थलों का दर्शन कराते हैं। उसमें से सर्व प्रमुख है, हमें पता है, काशी विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ, उनका दर्शन कराते हैं। उसके पश्चात बिंदु माधव मंदिर में लेके जाते हैं, वहां पर दर्शन कराते हैं और उसके पश्चात वो महाप्रभु को लेके जाते हैं अपने स्वयं के घर। अपने घर में महाप्रभु पहली बार जब आते हैं तो पहली बार वो महाप्रभु के चरणों का अभिषेक करते हैं और वो जल अपने परिवार वालों के ऊपर छिड़कते हैं और महाप्रभु के साथ साथ जो है वो उनके साथ जो आए हुए हैं बलभद्र भट्टाचार्य उनके सेवक, उनको भी अच्छे से मान सम्मान जो है वो तपन मिश्रा प्रदान करते हैं और इस प्रकार से प्रसाद हो जाता है उनका घर पर। प्रसाद के पश्चात महाप्रभु थोड़ा लेटते हैं और वो तपन मिश्रा उनकी चरण सेवा भी जो है वो करते हैं और इनका वार्तालाप चलता रहता है। उसी के दौरान खबर गांव में चली गई है कि चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा के घर पर है और वहां पर रहने वाले दूसरे भक्त, क्या नाम है उनका आपको याद है? चंद्रशेखर आचार्य। तो चंद्रशेखर वहां पर आ जाते हैं और चंद्रशेखर भी महाप्रभु से जो है वो वार्तालाप करना प्रारंभ कर देते हैं। हमें पता है चंद्रशेखर जो है वो जाति से तो वैद्य है लेकिन पेशे से वो मुनिम है और वहां पर चंद्रशेखर आचार्य महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु बहुत अच्छा हो गया आप वाराणसी में आए, हम लोगों को यहाँ पर तो केवल और केवल मायावादियों का ही संग मिलता है, इतने सारे मायावादी यहाँ पर भरे हुए है। अपन प्रारब्ध वसी वाराणसी स्थाने माया ब्रह्म शब्द विना नाही सुनी काने, कि हमारी हमारी प्रारब्ध से हम लोग जो है वो वाराणसी में रहना पड़ रहा है, हमें आपने आज्ञा दी थी हम लोग वाराणसी में है, माया और ब्रह्म इन शब्दों के अलावा शब्द विना नाही सुनी काने, कान में हमें और कुछ सुनाई नहीं पड़ता, केवल केवल ये माया और ब्रह्म यही शब्द हमारे कानों में आते हैं। शुक्र है कि तपन मिश्रा जैसे शुद्ध भक्त यहाँ पर है, वो हमें कुछ कृष्ण कथा करा देते हैं और उनके संग में हम थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। अच्छा हो गया महाप्रभु आप आए, महाप्रभु कुछ दिन के लिए आप यहीं पर निवास कीजिए। और इस प्रकार से महाप्रभु 10 दिन तक जो है वो वाराणसी में ही निवास करते हैं। हालांकि उनका प्लान नहीं था कि वहां पर रुके, लेकिन इन दो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए महाप्रभु वृंदावन जाने से पूर्व 10 दिन तक वाराणसी में रुकते हैं। उसी समय एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, ऐसा वर्णन आता है, वहां पर वो था, वो भी उनको ज्वाइन हो जाता है और वो भी जो है वो उनके संग में महाप्रभु के संग में भक्त बन जाता है और वो भी 10 दिन तक महाप्रभु को अपनी सेवा अर्पण करता है। महाप्रभु को तपन मिश्रा कहते हैं कि आप यहाँ पर है तो और किसी के घर आप प्रसाद के लिए मत जाइए, किसी का आमंत्रण स्वीकार मत कीजिए, आप मेरे ही घर जो है वो प्रसाद लिया कीजिए। कई सारे ब्राह्मण आया करते थे महाप्रभु को न्योता देने के लिए, आमंत्रण प्रदान करने के लिए, लेकिन महाप्रभु ये बहाना बताकर कि मैं ऑलरेडी बुक्ड हूं, मुझे किसी ने ऑलरेडी बता दिया है, आमंत्रित कर दिया है, ऐसा बहाना बताकर महाप्रभु उनका बहाना छोड़ देते थे। क्यों ऐसा बहाना बना के उनके निमंत्रण को छोड़ देते थे? क्योंकि महाप्रभु जो है वो डर रहे थे मायावादियों के संग से, इसलिए महाप्रभु दूसरे कई जगह जाना पसंद नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार से जो है वो एक ब्राह्मण वहां पर आता है और महाप्रभु से कहता है कि ये सब जो है वो मायावाद से भरा हुआ है। महाप्रभु कहते हैं कि कुछ चिंता मत करो, कुछ समय पश्चात जो है वो वाराणसी गांव का उद्धार हो जाएगा। वही ब्राह्मण फिर चला जाता है। एक मायावादियों का जो सरताज होता है उसका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। तो इस प्रकाशानंद सरस्वती के पास महाप्रभु का गुणगान करना प्रारंभ करता है ये ब्राह्मण कि प्रकाशानंद सरस्वती जी, ऐसे एक अपूर्व सन्यासी मैं देखा हूं जो पुरी से आए हुए है और मानो वो भगवान ही है। क्या सुवर्ण कांति उनकी चमकती है, क्या तेज है, और जो कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं तो सारे लोग उनके साथ कीर्तन में मग्न होके नृत्य करते भावावेश में पागल हो जाते हैं। अजानुलंबित तो भुजो, उनके हाथ लंबे हैं, कमल जैसे उनके नयन, अपूर्व सुंदरता उनकी है, मानो भगवान ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ये सन्यासी यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं, और क्या उनके कीर्तन की अपूर्व शोभा, जब ये सन्यासी कीर्तन करते हैं और उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं मानो गंगा की धार प्रवाहित हो रही हो। निरंतर कृष्ण नाम जीवातर गाय, दुई नेत्रे अश्रु वहे गंगा धारा प्राय। निरंतर कृष्ण नाम जिह्वा तारक गाय, उनकी जिह्वा जो है वो निरंतर कृष्ण नाम का जो है वो गान किया करती है, और उनके दो नेत्रों से हमेशा गंगा जल के समान अश्रु प्रवाहित होते हैं। वो नाचते हैं, गाते हैं और भाव विभोर होकर कीर्तन करते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती स्मित हास्य करते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं कोई आया हुआ है, श्री कृष्ण चैतन्य बड़ा अपने आप को सन्यासी मानता है, मैं जानता हूं वो केशव भारती का शिष्य है भारती संप्रदाय में, लेकिन उसका अपना नाम कृष्ण चैतन्य ही उसने रखा हुआ है। ढोंगी है, केवल भावुक है, और इस प्रकार से कोई जादू शायद जानता है, और जादू के वश में लोगों को अपने वश में कर लेता है और उनको भी नृत्य करके पागल बना देता है। कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप उसके संग में मत जाना, आप भी पागल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है सार्वभौम भट्टाचार्य वो बहुत बड़े पंडित है लेकिन उन्हें भी उसने पागल कर दिया है, तो आप जाएंगे तो उनके जादू में वश हो जाएंगे, आप यहाँ पे बैठ के मेरे साथ वेदांत पढ़ो, उसके यहाँ पे नहीं जाना। तो इस प्रकार से उसे प्रताड़ित कर देते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण भाग कर वहां से जो है वह चैतन्य महाप्रभु के पास चला जाता है और महाप्रभु से कहने लगता है कि महाप्रभु, ये जो प्रकाशानंद सरस्वती है, मैंने उसको आपका वर्णन किया, उसने तीन बार चैतन्य 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 ऐसा कहा, लेकिन कृष्ण नाम उसके मुख से एक बार भी नहीं आया, तो इन लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है। महाप्रभु कहते हैं ये मायावादी है, आप समझ लो। प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरवधि। ये मायावादी जो है वो भगवान कृष्ण के अपराधी है। क्यों अपराधी है ये कृष्ण के? क्योंकि ये कृष्ण को रूप नहीं है ऐसा हमेशा मानते हैं, इसलिए ये है कृष्ण अपराधी। और क्या वो हमेशा निरवधि, निरवधि मतलब निरंतर क्या कहते रहते हैं? ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरवधि, ये हमेशा ब्रह्म आत्मा चैतन्य ऐसे उनके जो है वो शब्दों का जंजाल में ये हमेशा अटके रहते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम उनके मुख से कभी नहीं आएगा। अतएव तार मुखे ना आई से कृष्ण नाम, कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप द्वैत समान। भगवान कृष्ण का नाम और कृष्ण का स्वरूप ये दोनों एक ही है, लेकिन ये लोग इसे नहीं जानते हैं, इसे ये माया मानते हैं भगवान कृष्ण के स्वरूप को, इसलिए इनका नाम होता है मायावादी, और इसलिए कृष्ण का नाम का उच्चारण ये कभी नहीं कर सकते। बद्ध जीव का, बद्ध जीव जब हम देखते हैं उनका देह और उनका नाम जो है वो अलग अलग हो सकता है, जैसे पानी शब्द और वास्तव में पानी ये दोनों अलग अलग है। जल 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 कह के मेरी प्यास नहीं बुझ सकती, उसी प्रकार से महाप्रभु कहते हैं कि ये जो भगवान का नाम है वो दिव्य है, भगवान का शरीर सच्चिदानंद दिव्य है, और ये दिव्य होने के कारण नाम और नामी मतलब व्यक्ति इनमें कुछ अंतर नहीं है। और पद्म पुराण से महाप्रभु एक श्लोक बताते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का नाम चिंतामणि के समान है, और नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, वो संपूर्ण चैतन्य रस से परिपूर्ण है। हमारे यहाँ पे एक भक्त है जिनका नाम है चैतन्य रस विग्रह दास, तो वो ढूंढ रहे थे कि मेरा नाम कहां पर है, तो यह श्लोक उन्हें चैतन्य चरितामृत में मिला था कि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध, भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है, जो भी उसके संपर्क में आ जाता है वह व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है। नित्य मुक्त, भगवान का नाम नित्य शाश्वत रूप में मुक्त है, जो भी इनके संपर्क में आता है वो भी मुक्त हो सकता है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी भगवान और उनका नाम ये जो है वो अभिन्न है, ऐसा जो व्यक्ति मानता है वही केवल भगवान का नाम अच्छे से ले सकता है। तो हम भी जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमें इस श्लोक को स्मरण में रखना चाहिए कि मैं साक्षात भगवान के संपर्क में हूं जब मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। इस प्रकार से महाप्रभु बताते हैं कि प्राकृत इंद्रियों के द्वारा भगवान को जानना असंभव है, इसलिए महाप्रभु और एक श्लोक बताते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः। तो हम जानते हैं कि ये श्लोक कहाँ पर आता है, ये श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, तो भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, लेकिन इस श्लोक की रचना रूप गोस्वामी इन्होंने नहीं की है, इस श्लोक की रचना स्वयं महाप्रभु ने की है। महाप्रभु यह श्लोक बताते हैं और आगे चल के हमें आएगा रूप शिक्षा, रूप गोस्वामी को जब शिक्षा देते हैं महाप्रभु, जब 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 सिखाएंगे उस समय भी महाप्रभु ये श्लोक बताएंगे, और महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पे रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। तो महाप्रभु ने वो शिक्षा जो है वो यहाँ पर उस ब्राह्मण को भी प्रदान की, और महाप्रभु बताना प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से भगवान के दिव्य गुण है और उन दिव्य गुणों के प्रति जो है वो आत्मा राम लोग हैं वो भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते, जो आत्म संतुष्ट है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिहि। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, हालांकि वो अनासक्त है सारी चीजों से, लेकिन फिर भी उनका मन भगवान के चरणों के प्रति आकर्षित हो जाता है, ऐसे भगवान के दिव्य गुण है। और महाप्रभु उदाहरण देते हैं चतुष्कुमार का, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संशोभम अक्षरजुषां अपिचित्त तन्वोः। चतुष्कुमार इस प्रकार से भाग के भाग के भाग के जा रहे थे, तस्य अरविंद नयनस्य, अरविंद नयन मतलब भगवान का नाम है, पदारविंद उनके चरणों में क्या अर्पित किया था, किंजलक मिश्र तुलसी, तुलसी अर्पित किए हुए केशर मिश्रित, उस तुलसी की सुगंध जो है वो प्रवाहित हो रही है और उनके नासिका में प्रवेश किया। और संक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्व, उनके चित्त हमेशा अक्षर ब्रह्म निराकार ब्रह्म में आकर्षित रहते थे, लेकिन वो भी भगवान के प्रति आकर्षित हो गए और वो भगवान के भक्त बन गए, ऐसे भगवान के जो है वो दिव्य गुण है। तो इस प्रकार से महाप्रभु कहे कि मैं तो प्रेम का पूरा बोरी भर के यहाँ पर लाया हूं, लेकिन खरीदने के लिए मुझे यहाँ पर ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, ऐसा ये वाराणसी का दुर्भाग्य है। लेकिन हमें पता है महाप्रभु केवल कम समय के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको याद है प्रकाशानंद सरस्वती का नाम यदि हमने कहां पर सुना था, आदि लीला में भी इसका वर्णन किए हुए हैं कविराज गोस्वामी अध्याय 6 जिसमें अध्याय 7 जहां पर पंचतत्व का निरूपण किया गया है। तो पंचतत्व निरूपण में प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार यही विस्तार से बताया गया है। तो कुछ भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार तो संन्यास लेने के पश्चात किया हुआ है, वो आदि लीला में क्यों आता है, तो पंचतत्व की कृपा कैसे बरसी और महाप्रभु ने मायावादियों तक के लोगों का उद्धार किया, उस उद्धार की महिमा का वर्णन करने के लिए कविराज गोस्वामी संपूर्ण प्रकाशानंद सरस्वती का वृत्तांत वहां पर बताते हैं। और अभी भी ये जो मध्य लीला का हम जो 17वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं वहां पर भी प्रकाशानंद सरस्वती की भेंट और उद्धार नहीं होता है। जब महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, वृंदावन से पुनः लौटते लौटते जब वाराणसी में आएंगे, उस समय अध्याय 25 में प्रकाशानंद सरस्वती का जो है वो वास्तव में उद्धार होने वाला है। तो इस प्रकार से जो है वो महाप्रभु अभी वापस चलने लगते हैं, और ये तीनों जन कौन, तीन जन तपन मिश्रा चंद्रशेखर आचार्य जो ब्राह्मण जो भक्त बना था, ये तीनों लोग महाप्रभु के साथ आगे 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 जाते हैं। महाप्रभु ने रोक देते, महाप्रभु कहते कि आप वापस चले जाइए, घर पे रह के भक्ति कीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, मैं पुनः वृंदावन से वापस लौटूंगा तब मैं आपको जो है वो मिलूंगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु अभी आगे गए, महाप्रभु पहुंच जाते हैं प्रयाग, और प्रयाग से महाप्रभु फिर वेणी संगम, गंगा और यमुना नदी वहां पर जो संगम है वहां पर स्नान करते हैं, वहां पर माधव जी का दर्शन करते हैं और प्रयाग में महाप्रभु 3 दिन तक रहते हैं। और जो 3 दिन तक महाप्रभु रहे, 3 दिन महाप्रभु ने कई सारे लोग जो मिलने के लिए आए उन्हें महाप्रभु ने जो है वो अपनी कृपा प्रदान की और भगवत भक्ति में उन्मत्त करके कृष्ण नाम लेते हुए पागल बना दिया। और जैसे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पूर्व में जब महाप्रभु दक्षिण दिशा में गए थे और उतने सारे लोगों का उद्धार किया, अभी महाप्रभु पश्चिम दिशा में गए हुए है। पूर्वे ये न दक्षिण याईते लोकनिस्तारिला, पश्चिम देशे तैचे सब वैष्णव करिला। क्योंकि महाप्रभु पुरी से गए थे और पुरी से जो है वो वाराणसी प्रयाग काशी ये पश्चिम में आता है, और पहले दक्षिण में गए थे, अभी महाप्रभु पश्चिम की तरफ गए। और पूर्वे मतलब पहले जब वो दक्षिण में गए थे वहां पर जो दक्षिण में उन्होंने उद्धार किया था लोगों का, उसी प्रकार से लोगों का उद्धार अभी वो पश्चिम में भी जो है वो कर रहे हैं। और जब महाप्रभु ने देखा यमुना, हम देखते दूसरी कोई नदी भी देखते तो महाप्रभु के मन में यमुना का भाव जागृत हो जाता है। अभी साक्षात यमुना जब देखते महाप्रभु यमुना के अंदर भागते भागते प्रवेश कर जाते हैं और कई समय तक बाहर ही नहीं आते, और बलभद्र भट्टाचार्य को जाके महाप्रभु को खींच के बाहर लेके आना होता है। इस प्रकार से जब महाप्रभु दूर से ही देखते हैं मथुरा नगरी कहाँ पर है, दूर से जब मथुरा नगरी का दर्शन होता है, महाप्रभु वहीं पर भूमि पर जो है वो अष्टांग प्रणाम मथुरा नगरी को अर्पण करते हुए वहीं पर लेट जाते हैं। और इस प्रकार से महाप्रभु अभी मथुरा में प्रवेश करते हैं और महाप्रभु जो है वो विश्राम घाट करके एक जगह है, उस विश्राम घाट में महाप्रभु स्नान करते हैं। उसके पश्चात कृष्ण जन्म स्थान वो उसका दर्शन कर लेते हैं और केशव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जैसे महाप्रभु केशव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां पर कीर्तन और नृत्य करते हैं, वहां के सारे पुजारी महाप्रभु को केशव जी का महाप्रसाद और माला अर्पण करते हैं और वो भी अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा अपूर्व सन्यासी, ऐसा अपूर्व कीर्तन नृत्य अभी तक हमने नहीं देखा है। उसी समय एक ब्राह्मण वहां पर आ जाता है और महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और वो भी कृष्ण प्रेम में मत्त होकर महाप्रभु के साथ नृत्य और कीर्तन करना प्रारंभ कर देता है। जब कीर्तन समाप्त हो जाता है, महाप्रभु उस ब्राह्मण को लेके थोड़ा साइड में आ जाते हैं, बाजू में लेते हैं उस ब्राह्मण को और उस ब्राह्मण को पूछते हैं कि ऐसा दिव्य प्रेम तुम्हें कैसे मिला। तो वह ब्राह्मण बताता है कि पूर्व कुछ समय पहले जब माधवेंद्रपुरी मथुरा में आए थे तब वो मेरे घर आए थे और मैंने उन्हें प्रसाद खिलाया था और उस समय उन्होंने मुझे दीक्षा प्रदान की थी। महाप्रभु बताते हैं कि मैं वही सोच रहा था, जरूर तुम्हारा माधवेंद्रपुरी के साथ कुछ संपर्क होगा, नहीं तो उनके संपर्क के बिना ऐसा कृष्ण प्रेम पाना इस दुनिया में असंभव है। और फिर बलभद्र भट्टाचार्य जो उस ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को महाप्रभु का भी संपर्क कैसे माधवेंद्रपुरी के साथ है ऐसा बताते हैं और बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के ही शिष्य है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और सनोदिया ब्राह्मण कहता है, महाप्रभु कृपया मेरे घर पर आप प्रसाद के लिए आइए। महाप्रभु कहते हैं, जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आएंगे। और महाप्रभु उसके घर पे जो है वो प्रसाद लेने के लिए चले जाते हैं। बलभद्र भट्टाचार्य तुरंत जो है उनके किचन में चले जाते हैं और खाना परोसने में मदद करते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि मैं यहाँ पर केवल एकमात्र कारण के लिए आया हूँ, क्योंकि माधवेंद्रपुरी आपके घर पर रहे थे और प्रसाद के लिए आए थे, इसी कारणवश मैं भी यहाँ पर आपके यहाँ पे प्रसाद के लिए आया हूँ। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो जो ब्राह्मण था वो सनोड़िया ब्राह्मण था। सनोड़िया ब्राह्मण ब्राह्मणों में शायद कनिष्ठ जाति होगी जिनके घर पर सन्यासी कभी प्रसाद के लिए नहीं जाते है। यद्यपि सनोड़िया हो सेत ब्राह्मण, सनोड़िया घर सन्यासी ना करे भोजन। वो सनोड़िया ब्राह्मण थे इसलिए सन्यासी उनके घर पर कभी प्रसाद के लिए नहीं जाया करते थे। सनोड़िया ब्राह्मण प्रसाद परोसते परोसते महाप्रभु से वार्ता करता है और महाप्रभु को कहता है कि आज हमारा सौभाग्य उदित हो गया है कि आप जैसे परम सन्यासी हमारे यहाँ पर प्रसाद के लिए आए हैं। पता नहीं शायद लोग आपको गाली गलौज करेंगे और आपकी आलोचना करेंगे कि ये कैसे सनोड़िया के घर पर प्रसाद लेने के लिए गया। महाप्रभु कहे कि आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि माधवेंद्रपुरी आपके घर पे प्रसाद लेने के लिए आए थे इसलिए मैं प्रसाद लेने के लिए आया हूँ। मेरा काम इन लोगों को संतुष्ट करना नहीं है, ये जो धर्म की स्थापना करने वाले महापुरुष होते हैं उनके चरणों का मैं अनुगमन कर रहा हूं। धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार पूरी गोसाई रही आचरण से ही धर्म सार। जो महापुरुष होते हैं जो धर्म का स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, एक साधु के व्यवहार से धर्म की स्थापना होती है, और जो माधवेंद्र पुरी किए हैं वो सारे धर्मों का सार है। इसलिए महाप्रभु महाभारत का श्लोक उद्रुक्त करते हुए कहते हैं महाजनो ये न गतः सपंतः, और भगवद्गीता का भी एक श्लोक उद्रुक्त करते हुए कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवद्गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 इसको भी महाप्रभु उद्धृत करते हैं वहां पर, और महाभारत का श्लोक बताते हुए कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो महाजन यानी माधवेंद्र पूर्वी उनके चरण कमलों का अनुगमन करते हुए मैं यहाँ पर जो है वो आया हुआ हूँ। इस प्रकार से वहां पर लाखों लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वहां पर भीड़ करते हैं। महाप्रभु घर से आकर जो है वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके सबको हरि बोल हरि हरि कहने के ध्वनि का उच्चारण करने के लिए कहते हैं, और सारे लोग जो है वो इस प्रकार से भगवान के नाम में मदमत्त हो जाते हैं। वही सनोड़िया ब्राह्मण आगे महाप्रभु के साथ जाता है। यमुना नदी के 24 घाट महाप्रभु देखते, शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सारे 24 के 24 घाटों का जो है वो नाम बतलाते हैं। 24 घाटों में महाप्रभु जो है वो स्नान करते हैं, और वो जो ब्राह्मण है सनोड़िया ब्राह्मण महाप्रभु के साथ गया हुआ वो कई सारे तीर्थों को महाप्रभु को दिखाता है, और महाप्रभु क्या क्या देखते हैं, मधुवन ताल कुमुद बहुलावन गेला तहां तहां स्थान करी प्रेमाविष्ट होइला। इस प्रकार से महाप्रभु कौन कौन से वन में गए उनका वन का वर्णन यहाँ पर कर रहे। मधुवन गए, तालवन गए, कुमुदवन गए, बहुलावन गेला तहां तहां स्नान करी। जहां जहां महाप्रभु गए वहां वहां पर महाप्रभु ने है जो पवित्र तीर्थों में स्नान किया प्रेमाविष्ट होकर। इस प्रकार से महाप्रभु जब जा रहे थे कई सारी गायें वहां पर आती है महाप्रभु के साथ चलती है, आगे चलते चलते जब जाते कई सारे हिरण वहां पर आते हैं और महाप्रभु को चाटने लगते हैं। वही दृश्य हमारे मंदिर में भी पेंटिंग किया गया है कि हिरण आके महाप्रभु के चरणों को चाट रहे हैं, और इस प्रकार से चाट रहे हैं। मोर आगे जाते हैं, मोर आगे जाते हैं, नृत्य करते हैं महाप्रभु के सामने। भोरे आते हैं और कई सारे लता वेली वृक्ष वो भी महाप्रभु का स्वागत करते हुए महाप्रभु का कीर्तन सुन के प्रफुल्लित हो जाते हैं। फल फूल मानो वो उनके चरणों में जो है वो अर्पण करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व जो वृंदावन में आए थे और वृंदावन छोड़ के अभी वो चले गए हैं, वही महाप्रभु जय गौर सेई कृष्ण, वही अभी राधा कृष्ण नाही अन्य, साक्षात राधा और कृष्ण दोनों एक रूप में चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ पर जा रहे है, वो सारे पशु पक्षी लता वेली भौरे वो सब अनुभव कर रहे हैं कि मानो इनके साथ हमारा पहला कुछ संबंध है, ये हमारे बंधु ही है। प्रभु देखी वृंदावनेर स्थावर जंगम आनंदित बंधु ये न देखे बंधु गण। इस प्रकार से प्रभु देखे वृंदावनेर स्थावर जंगम, चल और अचल जो भी वस्तु महाप्रभु जो देख रहे थे आनंदित बंधु ये न देखे बंधुगण। जिस प्रकार से ये लोग भी महाप्रभु को अपने बंधुगण के रूप में देख रहे थे, महाप्रभु भी उन सब को अपने बंधुगण के रूप में जो 5000 वर्ष पूर्व उन्हें लीला में सहायता की थी, 5000 इतने वर्षों के बाद अभी इन दोनों का मिलन हो रहा है। आप सोचिए कैसी ये प्रेमामृत की वर्षा वहां पर जो हुई होगी। महाप्रभु हर एक लता हर एक वेली हर एक वृक्ष को जाके आलिंगन कहते हैं, कृष्ण कृष्ण करके आलिंगन देते हैं, कृष्ण का उच्चारण हो रहा है, और वो लता वेली वृक्ष वो भी मानो प्रतिध्वनि के रूप में कृष्ण का जो है वो उच्चारण करते हैं। महाप्रभु आगे चल के कई सारे मृगों को भी जो है वो आलिंगन करते हैं, वो मृग उनके भी आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं और उनके रोमांच पुलकित हो जाते हैं, और वो भी कृष्ण प्रेम में कृष्ण कृष्ण नाम का है वो कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। जब महाप्रभु जा रहे हैं एक वृक्ष पर महाप्रभु देखते हैं एक तोता और मादा तोती, या हम उसे कहते हैं शुक और शारिका, उन्हें देखते हैं। जब शुक और शारिका को महाप्रभु देखते हैं महाप्रभु के मन में होता है कि इनसे कुछ सुना जाए, और जब महाप्रभु की इच्छा हो जाती है तुरंत वो शुक और सारिका दोनों महाप्रभु के हाथ पे आके कंधे पे बैठ जाते हैं और शुक जो है जो तोता है वो कृष्ण का गुणगान करना प्रारंभ कर देता है। महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर उस शुक को सुनते हैं। जैसे ही उनका गुणगान समाप्त हो जाता है सारिका जो है वो राधारणी का गुणगान प्रारंभ कर देती है और राधारणी का गुणगान महाप्रभु अपने कर्णों से आस्वादन करते हैं और इस प्रकार से उनका श्लोकों का चर्चा चलता रहता है। और फिर एक जो शुक है वो और कृष्ण का गुणगान करता है, करते हुए कहता है कि हमारे कृष्ण ते मदन मोहन है, जो सारे मदन कामदेव को भी आकर्षित कर ले, ऐसे है हमारे कृष्ण मदन मोहन। और फिर सारिका वो भी कम नहीं है, वो कहते हैं कि अरे तुम्हारे कृष्ण होंगे मदन मोहन, जो मदन को भी मोहित कर दे, लेकिन जब हमारी श्री राधिका सामने आ जाती है तो ये काम के वश में हो जाते हैं, ये मदन मोहन नहीं है, ये जो है वो कौन है मदन मोहित है, ये मदन मोहन नहीं है, ये मदन मोहित है का अर्थ होता है कि जो काम के वश में आ जाते हैं जब श्रीमती राधारानी सामने आ जाती है। और इस प्रकार से वो शुक और सारिका वहां से उड़ के पुनः अपने जगह चले जाते हैं और महाप्रभु ऐसे राधा और कृष्ण के दिव्य स्मरण में वहां से जो है वो नृत्य करते हुए आगे जाते हैं। और एक मोर भी महाप्रभु को देख के नृत्य करता होता देखता है। महाप्रभु जब देखते हैं उसका नीला कंठ, महाप्रभु को तुरंत कृष्ण का स्मरण हो जाता है और वहां पर महाप्रभु मूर्छित होके गिर पड़ते हैं। फिर बलभद्र भट्टाचार्य छिपके से जाके उनके कान में कृष्ण कृष्ण करके कीर्तन करता है और फिर महाप्रभु जो है वो वहां पर जो है वो उठ के खड़े होते हैं और आगे 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 महाप्रभु अभी जा रहे हैं। तो जो महाप्रभु का जो प्रेम है, तो कविराज गोस्वामी महाप्रभु का प्रेम जो नीलाचल में वृंदावन के प्रति था, रास्ते में जो था, और अभी साक्षात महाप्रभु वृंदावन का आस्वादन कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, संन्यास लेने के पश्चात तब से महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते हैं, अभी 5 साल के पश्चात, और जब कृष्ण के रूप में राधा कृष्ण के रूप में थे 5000 वर्ष पूर्व, वही महाप्रभु अभी इस वृंदावन का आस्वादन यहां पर कर रहे हैं। कल्पना कीजिए वो प्रेम की वृद्धि और उसका क्या अनुभूति महाप्रभु को हो रही होगी, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन कविराज गोस्वामी उसको बयान करने के लिए कुछ श्लोक रचना करते हैं। नीला चले छिला ऐसे प्रेमावेश मन, वृंदावन आई ते पथे हैल शत गुण। नीलाचल में छिला यही छे प्रेम आवेश मन, नीलाचल में महाप्रभु का जो प्रेम के आवेश में जो मन था, वृंदावन यही ते पथे होइल शत गुण, जो वृंदावन के जो दिशा की तरफ जब वो चल पड़े तो वो जो प्रेम था नीलाचल में वो 100 गुना बढ़ गया है अभी। और अभी जब महाप्रभु वो पथ में मार्ग में ही 100 गुना बढ़ गया है और अभी तो वो प्रेम की वस्तु प्राप्त हो गई है, अभी कितना बड़ा है, सहस्त्र गुण प्रेम बाड़े मथुरा दर्शने, लक्ष्य गुण प्रेम बाढ़े भ्रमेन ये वने। 1000 गुण ये बढ़ जाता है जब महाप्रभु मथुरा का दर्शन कर लेते हैं और जब अभी वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं तो वही प्रेम अभी 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। तो नीलाचल का प्रेम हमने देखा, नीलाचल में नीलाचल में जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, तो कैसा उनका प्रेम का आस्वादन था, उनके आंखों से माने यंत्र पिचकारी करके अश्रुएं की धारा बहती थी और जो भी लोग इर्द गिर्द है वो भीग जाते थे उसमें। वो प्रेम की तुलना कर रहे महाप्रभु, वो प्रेम महाप्रभु का जो था जब महाप्रभु रास्ते में चले तो वो 100 गुना बढ़ गया, मथुरा का दर्शन किया तो 1000 गुना बढ़ गया और अभी जब वृंदावन में प्रवेश किया है तो 1,00,000 गुना अभी वो महाप्रभु का प्रेम बढ़ गया है। और उस 1,00,000 गुना बढ़े हुए प्रेम से महाप्रभु अभी वास्तव में वृंदावन का भ्रमण कैसा करते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे हमारे कल के सत्र में। तो अध्याय 18 जिसका शीर्षक रहेगा वृंदावन भ्रमण, अभी तो यह था 17 वृंदावन गमन, और हमारी प्रथा के अनुसार इस 17वें अध्याय का पहला श्लोक जो हम लोग लेते हैं, अध्याय संपूर्ण होने के पश्चात पहला श्लोक जो कि संपूर्ण अध्याय का सारांश हमें बताता है, तो क्या कहते हैं कविराज गोस्वामी। गच्छन वृंदावनम गौरो व्याघ्र भैण खगान्वने, प्रेमोन्मत्तांस हो नृत्यान विदधे कृष्ण जल्पितः। विदधे बना दिया, क्या बना दिया, प्रेम में उन्मत्त बना दिया, कृष्ण जल पिन्हा, कृष्ण का नाम का जप करके प्रेम में उन्मत्त कर दिया। किसने उन्मत्त कर दिया, गौरांग महाप्रभु ने उन्मत्त कर दिया। कब, गच्छन वृंदावनम, जब वृंदावन के लिए गमन कर रहे थे उस समय उन्होंने प्रेम में उन्मत्त कर दिया। किस किस को उन्मत्त कर दिया, व्याघ्रह सारे बाघों को, ईबह सारे हाथियों को, एण सारे हरणियों को, और खगान सारे पक्षियों को। तो इस प्रकार से महाप्रभु का ये केवल है वृंदावन गमन, और कैसे महाप्रभु वृंदावन पहुंचे इसकी हमने चर्चा की, और वो जो 1,00,000 गुना उनका जो प्रेम बढ़ गया है, और उस प्रेम से महाप्रभु अभी कैसे वृंदावन का आस्वादन करेंगे उसकी चर्चा हम करेंगे हमारे कल के सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और एक सूचना, इस प्रकार से हमारा लॉकडाउन जैसे बढ़ गया है, हमारी परीक्षा वास्तव में आदि लीला की आज होने वाली थी 14 तारीख, जिस दिन लॉकडाउन उठने वाला था वो हमने सोचा था, और हमने हमारी परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई थी ताकि विदेश के भी भक्त इसमें भाग ले सके, उन्हें थोड़ा दिरंगाई से पता चला था, और हमारे भक्तों को भी पढ़ाई करने के लिए थोड़ा समय की आवश्यकता थी, तो हमने हमारी परीक्षा की तिथि बना दी थी 3 मई, और आज ही हमारे पंतप्रधान मोदी जी इन्होंने घोषणा की है कि हमारा लॉकडाउन का तिथि 3 मई तक चलेगा। तो 3 मई तक अभी समय है, अभी भी जिन भक्तों ने भाग नहीं लिया है इस चैतन्य चरितामृत कॉन्टेस्ट CCC में, उन्हें निवेदन करेंगे कि अभी भी आप इसमें भाग ले सकते हैं, अभी भी 15 दिन है, इतना मधुर जो है वो ये चैतन्य चरितामृत का रस पान आप कर सकते हैं। लॉकडाउन का पीरियड अभी भी बाकी है, कई सारे भक्तों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो अभी भी 1-2-3 दिन बाकी है, इसमें आप रजिस्टर कीजिए, और 3 मई को जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप अपने आप को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।